कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय हम आदरणीय सभापति महोदय और मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय एवं पूज्य संतगण उपस्थित सज्जन मंडली वैष्णवगण एवं वैष्णवी सभी को यथा योग्य मेरा अभिवादन स्वीकार हो। मैं पहले आवेदन करना चाहता हूं कि जैसे मुझको मेरे लिए बतलाया गया मैं एक महान व्यक्ति हूं यह बात और चतुर्वेदी जी ने मेरी जो महिमा गान किया ये तो पल पल में मेरी मृत्यु हो रही है किंतु मृत्यु नहीं होती है यही एक आश्चर्य की बात है। मैं वैसा कुछ नहीं एक तुच्छ भक्ति का साधक भी अभी नहीं बन पाया इसलिए मैं करबद्ध होकर के प्रार्थना करता हूं कि मेरे संबंध में ऐसी बातें आप लोग धारणा छोड़ दें कि मैं ऐसा कोई विलक्षण मुक्त महापुरुष हूं। मैं एक ब्रज की एक धूलिकण का उपासक बनना चाहता हूं। इस आनंद धाम में आनंदमय अभ्यासात इत्यादि सूत्रों के माध्यम से मैं यही श्रील व्यास देव जी सुखदेव गोस्वामी और गुरु परंपरा से यही प्रार्थना करता हूं। विशेष करके मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। विदेशों में भी मेरा यही वक्तव्य रहता है हमारी भारतीय संस्कृति महान है महान थी अभी भी महान है भविष्य में भी महान रहेगी। मां तमसा ज्योतिर्गमय मां तमसा अंधकार यह संसार रूपी मोह के अंधकार से दूर आत्मा अनात्म ज्ञान के प्रकाश से उद्भासित ये हमारी भारत भूमि है। अतिथि देवो भव मातृ एवो भव पितृ देवो भव अतिथि देवो भव सर्वे सुखिना भवन्तु सभी सुखी सर्वे निरामया सन्तु सभी निरामय हैं ऐसी शुभकामनाएं थी किसी एक व्यक्ति के लिए केवल हिंदुओं के लिए नहीं आर्य ऋषियों के लिए नहीं समस्त विश्व के केवल मनुष्यों के लिए नहीं जितने भी प्राणी जगत जीवन में जीवित जीव हो सकते हैं चाहे गुल्म लता पशु प्राणी पक्षी कीट पतंग देवता ऋषि गंधर्व इत्यादि सबके लिए कहा गया है। बहुत से लोग मनुष्यों के मानव जीवन के कल्याण में जुटे हुए हैं मैं उनकी प्रशंसा अधिक नहीं कर सकता क्योंकि उनकी बुद्धि सीमित है उनकी दृष्टि में पशु पक्षी कीट पतंग ये सब प्राणी नहीं है ये आत्माएं नहीं है किंतु यथार्थ बात ऐसी नहीं है। इसीलिए ये आनंद धाम की स्थापना हुई और स्थापना करने के बाद में श्री विग्रह इत्यादि स्थापना करने के पश्चात हमारे परम आदरणीय कैला जी ने सारी वस्तुओं को लेकर हमारे पास में आए और हमारे चरणों में न्योछावर कर दी। मैंने कहा ये आप ये क्या कर रहे हैं तो ये सब कुछ किया है भगवान के लिए और गुरु के लिए आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैंने कहा जी आपको मालूम होगा आप दशरथ जी और वशिष्ठ जी का संवाद रामचंद्र जी के जन्म लेने पर भरत शत्रुघ्न इत्यादि के जन्म लेने के बाद में महाराज दशरथ ने सारी अपना सारा साम्राज्य उनके चरणों में न्योछावर कर दिया और वशिष्ठ जी बोले मैंने इसको ग्रहण किया और आप प्रतिनिधि मेरे प्रतिनिधि होकर के इस राज्य की रक्षा करेंगे आप देखभाल करेंगे कभी ना समझे कि ये मेरा है आप प्रतिनिधि हैं इस अवसर में, जब इच्छा होगी हम मैं ले लूंगा। मैंने कैलाश जी को यही बतलाया, मैंने सब कुछ ले लिया किंतु इसके मेरे प्रतिनिधि होकर के इसकी रक्षा करेंगे और जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। शायद हमको जरूरत फिर नहीं होगी, वही देखेंगे सुनेंगे और इसकी सुंदर व्यवस्था करेंगे, उसकी रूपरेखा बनाएंगे। किसी समय में मैं इंग्लैंड में बर्मिंघम में था, वहां एक सर्व धर्म सम्मेलन हुआ। आज जैसे यहां श्री श्री श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, वेद भगवान, भागवत भगवान और कृष्ण इत्यादि की प्रतिष्ठा हुई और गोपेश्वर महादेव अपने परिकरों के साथ में प्रतिष्ठित हुए, विषय कुछ ऐसा ही था शिव विग्रह तत्व। लोगों की धारणा यह है भगवान तो निराकार है, निर्विशेष है, निरंजन है, अरूप है, निर्विशेष है, फिर उनकी मूर्ति की क्या आवश्यकता है। आर्य ऋषियों के अतिरिक्त हमारे मुस्लिम भाइयों ने, हमारे ईसाई भाइयों ने, हमारे बौद्धों ने, जैनियों ने और किसी ने भी भगवान का शिव विग्रह शिव मूर्ति नहीं माना। दिखाई पड़ता है वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भागवत में और जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा अनादि काल से ही देखी जाती है। उनकी धारणा है यदि उस परब्रह्म का, गॉड का, खुदा अल्लाह का यदि शिव विग्रह होगा तो उसका जन्म मान्य हो गया, फिर उसकी मृत्यु भी माननी पड़ेगी। इधर से उनका कोई शिव विग्रह नहीं मानते, किंतु बड़े खेद की बात है कि हमारे बाइबल के प्रथम चैप्टर के प्रथम अध्याय के में ही बतलाया गया गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। गॉड ने, ईश्वर ने, ब्रह्म ने अपने शरीर के अनुरूप मनुष्यों को बनाया। यदि भगवान का कोई रूप नहीं है तो भगवान ने अपने रूप के अनुरूप में मनुष्यों को कैसे बनाया, तो बाइबल से काट करके निकाल दें उनकी क्षमता हो तो नहीं निकाल सकती। उसी प्रकार से हमारे कुरान का एक हदीस है इन्ना लहा खला का मेन सूरत ही, खुदा तल्ला ने, अल्लाह ने अपने रूप के समान में मनुष्य को बनाया, तो वो लोग भी निकाल दें यदि क्षमता हो तो, वो लोग भी नहीं निकाल सकते। इसलिए वेदों में भी जैसे सत्यव सम्यक, इदम अग्रासीत इत्यादि, स अक्षत इत्यादि बतलाया गया उपनिषदों में, उन्होंने इच्छा की, न तस्य कर्म करणं च विद्यते न तत् समस्ताधिकस्य दिश्यते पराश शक्ति विबुद्धैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान क्रिया च। अरे भगवान में काम तो नहीं है किंतु सब कुछ सुनते हैं। भगवान का यह ऐसा मनुष्य रूप नहीं, मॉर्टल स्वरूप नहीं है, मर्त शरीर नहीं है, किंतु है, सर्वत्र चलते हैं, पैर नहीं है, सर्वत्र चलते हैं। तात्पर्य क्या, तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है। तुलसीदास जी का रामायण इत्यादि देखेंगे, हमारे भागवत को देखेंगे, निर्गता गुणा जस्मा, जिससे सारे प्राकृत गुण निकले हैं, अप्राकृत सर्वगुण संपन्न वो भगवान है। इन्हें भगवान का रूप है किंतु कैसा रूप है, उनका रूप है निर्गुण। क्या निर्गुण माने प्रकृति से अतीत है, सब सदगुण जितने भी हो सकते हैं सब उनमें निवास करते हैं। इसीलिए अभी वक्ता महोदय ने बतलाया आनंदमय अभ्यासा, श्रुतियों में कहा गया आनंदम ब्रह्म, सच्चित आनंदम ब्रह्म, किंतु व्यास जी जो उसके सूत्रों को बनाने वाले हैं, ब्रह्म सूत्र के रचयिता हैं, प्रकाशक हैं, उन आनंदमय अभ्यासात आनंदमय कहा। शंकराचार्य जी कुछ चक्कर में आ गए, हैं तो शंकर किंतु जीव कल्याण की दृष्टि से ऐसा कुछ मोह प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा ये गुरु जरा कम ज्ञान वाले हैं। अपने वेदांत सूत्र की शारीरिक व्याख्या में उन्होंने बतला, भाष्य में बतलाया, सामंजस्य नहीं कर सके। आनंदम ब्रह्म आनंदम अयम ब्रह्म दोनों संभव है, अलग अलग नहीं। ग्लास में पानी के समान ही नहीं, ग्लास भी है पानी भी है दोनों है, उसके बाहर भीतर सब कुछ वही है। बस दृष्टा का ये प्रश्न है, दृष्टा कैसा है। इसलिए ब्रह्म का रूप है। यदि हम लोग कॉज कारण और कार्य दोनों कार्य कारणवाद अथवा कॉज एंड एक्शन थ्योरी को हम देखें तो जिसको हम कार्य रूप में देखते हैं उसका कारण भी जरूर होगा। बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता। जतो अमायनी भूतानी जायन्ते येन जातानि तत्संविशन्ति तद् ब्रह्म। जिसे यह सारा जगत निकलता है, जिसे पालित पोषित होता है, रहता है और अंत में जिसमें वो सब जगत मिल जाता है, जगत और जगत के प्राणी सब मिल जाते हैं, वो ब्रह्म है। तो ये कारण है वो परब्रह्म। यदि परब्रह्म में ये रूप न हो तो ये रूप आया कहां से, आया कहां से। इसलिए समस्त जितने भी रूप ये देखते हैं सब उस परब्रह्म में है, किंतु सर्वोत्तम मनुष्य रूप है जिसको मनु और शत्रुपा के रूप में पहले उन्होंने प्रतिष्ठित किया। इस तरह से भगवान निर्गुण होते हुए भी अप्राकृत सद्गुण संपन्न सब समय सगुण भी हैं। ऐसा नहीं कि वो सगुण निर्गुण है और मनुष्यों के ऊपर में कृपा करने के लिए सगुण हो गए, नहीं, एक साथ में दोनों ही है। इसलिए भगवान का रूप है, गुण है, क्रिया है, हम उनकी उसी रूप की हम उपासना करते हैं। आज उसी श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा कृष्ण और सदाशिव रूपी गोपीश्वर महादेव की यहाँ पर स्थापना हुई आनंद धाम में। सचमुच में यह आनंद धाम आनंद धाम ही हो। संत यहाँ पर पधारेंगे, अपने अमृत रूपी भाषणों से सबका कल्याण करेंगे। और जो जैसे कि वृद्धों की स्थिति बतलाई गई, यहाँ पर वृद्धों का भी पालन पोषण होगा, चारों वर्णाश्रमियों का यहाँ पर लालन पालन होगा, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी बनेंगे, देश का कल्याण करेंगे, जगत का कल्याण करेंगे, वो तो ठीक है अपने स्थान पर, किंतु सबका यही अंतिम सार है कि सभी प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। यह कृपा दो रूपों में है, एक भक्त कृपा के रूप में